اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ روزی کشادہ کر دیتا ہے، ایکسپینڈ یور پروویژن۔ دوسری بات ہے، روحانی خوشی ملتی ہے۔ اور آپ نے فیل کی ہوگی، ہمارے والد ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ روٹی ایک ہی ہے، بھوک خود بھی لگی ہے، ایک صورت ہے خود کھا لو، پیٹ تو اس سے بھر جائے گا۔ دوسری ہے کہ اس کے دو ٹکڑے کرو، آدھی خود کھا لو، آدھی دوسرے کسی بھوکے کو کھلا دو۔ کہتے ہیں کہ اس سے تمہیں روحانی خوشی بھی ملے گی اور تمہیں زیادہ سودگی ملے گی، تو دیتے ہوئے خوشی تو بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں نا، ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کھانا پکاتی ہیں، کتنا سکون ملتا ہے اس وقت جب آپ کا پکا ہوا کھانا سب کھا رہے ہیں، شوہر بھی کھاتے ہیں، بچے بھی کھاتے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بزرگ ہیں گھر میں، کوئی مہمان ہے، کسی کو آپ ایک پلیٹ بنا کر دے دیں، گھر کے کسی ملازم کو دیں، تو خوشی ہوتی نا۔ مجھے یقین ہے کہ مردوں کو بہت خوشی ہوتی ہوگی جب ان کی لائی ہوئی گروسری کو خواتین بہت اچھے طریقے سے سنبھال کے خرچ کرتی ہیں۔ ہاں، ضائع نہیں کرنا کہ آدھا لہسن اور آدھا دھنیا ضائع ہو جائے اور گل جائے۔ تیسرا فائدہ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں سچے دل سے خرچ کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں دن رات مال خرچ کرنے والے خوف اور حزن سے آزاد ہوں گے۔ جی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کی مثال دگنا پھل لانے والے باغ کی طرح۔ یعنی ایک تو وہ باغ ہے نا جس میں پھل آتا ہے، لیکن جس میں ڈبل آئے، مثلا لوگوں کو پروفٹ ہو رہا ہے $100 کا، تو آپ کو پروفٹ ہوگا $200 کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے۔ یہ کنجوسی بہت بری ہے، تھوڑا تھوڑا پکانا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو بھی اس چیز سے بہت چڑ تھی، مہمان کی آمد پہ دل کھول دیں۔ حضرت ابراہیم کے تو قصے ہیں قرآن میں، سورہ زاریات پڑھیے 27 پارا۔ دو تین مہمان آئے، پورا بکرا بھون کے رکھ دیا، تو ناپ ناپ کے اور کوکیز گن گن کے رکھنا، مختصر سا پکوان، یہ بری بات ہے۔ کشادہ پکائیے، مہمان کھائے، آپ بھی کھائیے، بچ گیا تو ہمسایوں کو دے دیجئے۔ جو نہیں کرنا نا وہ ضائع نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ میاں صاحب کی تنخواہ بہت لمیٹڈ ہے اور بیگم گروسری پہ آدھا لگوا دیں، یہ بھی نہ کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سمجھدار ہیں، خواتین بہت سمجھدار ہیں، اور اسپیشلی ہماری دیسی خواتین تو بہت ہی گھریلو اور ماشاءاللہ سگڑ خواتین ہوتی ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، 7 چابیوں کے بعد 8ویں چابی۔ شرعی علوم کے حصول کی خاطر وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا۔ ذرا لمبا ہی ٹاپک ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو خود کو علم حاصل کرنے کے لیے ڈیووٹ کر چکے ہیں، یعنی علم لینے کے لیے یا علم دینے کے لیے، کمانے کی اور کاروبار کی اور جاب پہ جانے کی بجائے وہ اپنا پورا وقت اس چیز پہ لگائیں، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ 24 آورز ڈیووٹیڈ یا فل ٹائم ورکرز۔ اب ان کو کون دے گا؟ ان کو وہ دیں گے جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے زائد دیا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ سے جوڑیں گے، اور وہاں بیٹھے طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والے لوگ اس علم کو لیں گے آج تو کل دنیا کو دیں گے۔ تو رزق کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے، اور یاد رکھیے کہ ایسے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ بھی اس وقت وہی ہیں میری گمان میں، جو اپنے آپ کو شرعی علوم کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ ان پہ خرچ کرنا مال کو لے کر آتا ہے۔ بات تو بہت بڑی کہی، لیکن دلیل ہے سامنے، اس لیے بڑا یقین ہے اس میں۔ پہلے اپنے اوپر لیجئے، کیونکہ میرا تو یہ پیشن ہے، تو سوال کیجئے، میں پہلے خود سے کروں اور آپ بھی اپنے اوپر لے آئیے گا، کیا میں خود کو دین کے لیے وقف کر چکی ہوں؟ کیا میری زندگی کا مقصد علم لینا اور دینا بن چکا؟ کیا میں پارٹ ٹائم ورکر ہوں یا فل ٹائم؟ سب جانتے ہیں اس کا فرق کیا ہے، گھر میں کیا آتا اور کیسا جاتا اور کیسے ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دلائل کہ خود کو وقف کرنے والوں پر خرچ کرنے سے رزق کیسے آتا ہے۔ امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت دی ہے، حضرت انس بن مالک سے ہم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک میں دو بھائی تھے، ایک علم کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا، یعنی اسٹوڈنٹ تھا، स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, कितना प्यारा टाइटल है। अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बनाए रखे। और दूसरा हसूले माश के लिए सही और कोशिश करता था, यानी कारोबार करता था, कमाता था। हसूले माश के लिए जिद्दोजहद करने वाले ने अपने भाई से शिकायत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर, यानी उसके बारे में जाकर अपने भाई की शिकायत लगाई। और ये हो जाता है कि जहाँ दोनों बराबर हैं, कहने लगा कि अल्लाह के नबी, ये कमाता तो कुछ है नहीं, बस हर वक्त इल्म और पढ़ना पढ़ाना ही करता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, शायद तुम्हें रिस्क इसी की वजह से दिया जा रहा है। नोट कीजिए ये जुमला, तुम्हें रिस्क इसकी वजह से दिया जा रहा है जो इल्म पे खुद को लगा चुका है। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी ने रिस्क के लिए मेहनत करने वाले को, जो कि अपने तालिब इल्म भाई की शिकायत लेकर आया था, ये बात सिखा दी, समझा दी कि अपने भाई पर खर्च करके एहसान ना जतलाना। वो तो ये सोच रहा था ना कि मैं मेहनत करता हूँ, मशक्कत मैं करता हूँ, सारा दिन मैं ही करता हूँ काम, और ये मज़े से घर बैठा खाने खा रहा है। फरमाया, नहीं, तुम्हें ये नहीं पता, शायद जो रिस्क उसे मुयस्सर आ रहा था उसकी असल वजह तलबे इल्म में मशगूल भाई ही हो। और वल्लाही ये सच है, आप इसको आजमा कर देखिए, फिर आप इसकी बरकतें देखेंगे। लोगों की कोशिशों और मेहनतों से उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो कि इंसान को ऐसी नेकियां करने से मिल जाती है। असल बात क्या है, हमें अल्लाह पर यकीन हो। तो कभी भी ये ना कहिए, बाज दफा होता है ये सुस्त है, ये ऐसा है, ये मौलवी साहब है नहीं, इनको तो बस मस्जिद में जाके बैठने से ही काम है, ये काम से बचने के लिए ये करे। कभी भी ऐसा ना कीजिए। फहल तुरज़कून इल्ला बिदुआफाइकुम, कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह के नबी का, तुम्हें फक्त तुम्हारे कमजोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। और कमजोरों में बूढ़े माँ बाप भी होते हैं। अब जिन्होंने कुछ देना तो है नहीं, रिन्यूअल तो उनकी हो नहीं सकती, बल्कि हर महीने अब दवाइयों पर भी खर्च हो रहा है, खाने पीने की भी बजाय। खुशी से खर्च कीजिए अपने बूढ़े माँ बाप पे, बुजुर्गों पे खर्च कीजिए। अब वो आपको फिजिकली तो कुछ दे नहीं सकते दुआओं के सिवा, लेकिन उन पे खर्च करने और उनकी दुआओं से तुम्हें जो मिलता है ना, ये तुम्हें उस दिन पता चलेगा जिस दिन ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और ऐसे कई मुशाहदे हैं कि माँ बाप की ज़िंदगी में कभी बच्चे को मुश्किल ना आई, लेकिन माँ बाप के दुनिया से उठते ही आजमाइशों ने रास्ता पकड़ लिया। चलिए आगे चलिए और देखिए कि इसकी क्या कुरान पाक में भी कोई दलील है, यानी रिस्क के असबाब में एक क्या हुआ कि वो लोग जो खुद को शरई उलूम हासिल करने के लिए वक्फ कर दें, उन पर खर्च किया जाए। और रिवायत भी हमने सुन ली कि कैसे एक कारोबार करने वाला और एक इल्म लेने वाला, उस मामले को अल्लाह के नबी ने कैसे रखा। और ये जो हदीस है ना, इसकी शरह में उलमा के दो अकवाल हैं कि लाल्ला का तुरजक भी ही, कि शायद तुझे रिस्क इसकी वजह से मिल जाए। सीगे मजहूल है, यानी तुरजक मजहूल है, ठीक है, पैसिव वॉइस है इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो। इससे मुराद क्या है कि मुझे उम्मीद है या अंदेशा है कि तुझे रिस्क मिलने का सबब तेरी हुनरमंदी या कारीगरी नहीं, बल्कि तुझे तो अपने तलब इल्म में मशगूल भाई की बरकत की वजह से रिस्क मिल रहा है, बस तुम इस पर खर्च करने का एहसान न जतलाओ। और अगली रिवायत कि तुम्हें फक्त तुम्हारे कमजोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। किसी घर में कोई हैंडीकैप हो सकता है, कोई यतीम पलता है, कोई बूढ़ा है, खानदान का ही कोई ऐसा बेचारा कलाला है, ला वलद वला वालिद, ले आइए उनको अपने घरों में, यह आपके घर की बरकत है। बहुत सारी इससे आपको अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें और रहमतें मिलेंगी। इमाम गज़ाली कहते हैं, अपने सदकात ऐसे लोगों तक पहुंचाने का एहतमाम करना चाहिए जिनकी वजह से सदकात की कदरों कीमत में इजाफा हो। नोट करिएगा ये बात, क्योंकि बाज़ हम सदके का माल ऐसे फेंकते हैं जैसे मैले कपड़े, जिधर मर्जी डाल दो, राह जाते किसी चंदा बॉक्स में डालते हैं लोग, पता नहीं कल किधर जाएगा। नहीं, एक पैनी ना जाया कीजिए, ऐसी जगह पे मत लगाइए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, यकीन ही नहीं करेंगे क्या। तो क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों तक पहुंचाने का एहतमाम करना चाहिए जिनकी वजह से सदकात की कदरों कीमत में इजाफा हो, जैसे अहले इल्म पर सदकात खर्च करना, क्योंकि इससे इन्हें हसूले इल्म में मदद मिलेगी। अगर नियत दुरुस्त हो तो सबसे आला इबादत है ये, क्या? इल्म हासिल करना। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक अपनी खैरात अहले इल्म को ही देते थे। आपको पता है ये अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन थे? इमाम बुखारी के उस्तादों में से थे। जब इनसे कहा गया कि आप अपनी खैरात की तकसीम में दूसरे लोगों को भी शामिल कर लीजिए, तो फरमाने लगे, अब इनका जुमला नोट करने के काबिल है, और ये सिर्फ वही समझेगा जिसको इल्म की कदर है, और ये इल्म वालों ही को होती है, और अल्लाह आपको मुझे इन्हीं में डाल दे। कहते हैं कि मैं मनसबे नबूवत के बाद, यानी किसी के नबी बन जाने के मनसब के बाद, किसी ऐसे मनसब को नहीं जानता। मनसब कह लीजिए रैंक, स्टेटस। कौन? जो उलमा के मनसब से आला व अफजल हो। तो आप सबको एक नसीहत करूंगी, इल्म वालों का कभी मजाक ना उड़ाएं, कभी उनको डिग्रेडेट ना करें, मसलक और फिरके में मत उलझिए। आज के दौर में जो इल्म की खिदमत कर रहा है, वल्लाही वो काबिले तारीफ है। अल्लाह अकीदे में कमी है उनके, तो उसको दुरुस्त कर दे। कोई नबी से ताल्लुक में ऊंच नीच है, तो उसको दुरुस्त कर दे, और नीयत का कोई फतूर है, तो उसको दूर कर दे। अब सवाल पैदा होता है, क्यों? वजह वजह भी लिखी हुई है। अगर उलमा में से किसी का दिल अपनी हाजत और जरूरत पूरी करने में मशगूल हो गया, तो ना वो इल्म के लिए फारिग होगा और ना इल्म सीखने के लिए पेशकदमी करेगा। इन्हें इल्म के हसूल की खातिर फारिग करना अफजल है। यानी इनको कहा जाएगा कि आप फारिग हो जाएं, आप इन चीजों की फिक्र ना करें, आप बस इल्म में लगें, बाकी काम हम देखेंगे। क्योंकि जो शख्स रिस्क के हसूल का ख्वाहिशमंद हो, वह अपना माल इन लोगों पर खर्च करें जो इल्म शरई हासिल करने के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक में कोई एक आयत भी इस मौजू की है? तो जी, एक से ज्यादा हैं, लेकिन नंबर मैं आपको नोट करवा देती हूँ। सूरत अल बकरा आयत नंबर 273, 273 सूरह बकरा का वो हिस्सा जिसमें मनी मैनेजमेंट की बातें हैं। लिल फुकरा इल्लज़ीना उख्सिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना दरबम फिल अर्दी यक्सबहुमुल जाहिलु अग्निया मिन अत्ताफुफी तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यस्सलूनन्नास इल्हाफा वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम। यानी तुम्हारे सदका खैरात और तुम्हारे माल उन मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह की राह में, यानी जिहाद के लिए या दीन का इल्म हासिल करने के लिए रोक दिए गए, बंद कर दिए गए, और वो जमीन में सफर नहीं कर सकते, मुराजे के कोई मूवमेंट नहीं कर सकते अपने कमाने के लिए। जहन में अबू हुरैरा को ले आइए, जिनका तذکرہ पहले दिन किया गया था। जो इनका हाल नहीं जानता, वो इन्हें इनके सवाल न करने की वजह से मालदार समझता है, यानी ये भिखारी नहीं होते, ये अपने चेहरे मोहरे से जरूरतमंद नहीं लगते, अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक रखते हैं कि कोई खबरदार हम पे तरस खाए कि इनके पास कुछ है नहीं, तब इनको दूं। आप इनका चेहरा देखकर इनको पहचान लेते हैं, लोगों से लिपट कर नहीं मांगते। नोट कीजिए इस जुमले को, इल्म वालों को कभी लोगों से लिपट के मांगना नहीं, पीछे नहीं पड़ना कि चंदा नहीं दोगे तो नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा ना कीजिए। और तुम जो माल बतौर खैरात खर्च करो, बस अल्लाह ताला इसे खूब जानते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमारे माल का कसीर हिस्सा इल्म की नशरो इशात पे लग जाए, वो किसी भी तरह लगे। आप ज्यादा शक ना करें लोगों पे, कौन खा गया, किधर ले गया, किसको, वो जाने और उनका रब जाने, आपको आपकी नियत पे मिलेगा। और ये भी बिल्कुल नहीं करना कि हर चंदा बॉक्स में डाल दीजिए, चलिए कोई अच्छा ही काम होगा। देखिए, कुरान सुन्नत से, शरीयत से करीब तरीन को देखिए, बल्कि खुद इन्वॉल्व होकर देखिए अंदर खाता क्या है। आप भी तो उस काम में कुछ हिस्सा डालें ना, जिसमें लोग इल्म का हिस्सा डाल रहे हैं, आप उसमें अपनी स्किल्स का हिस्सा डालिए। तो खुलासा कलाम यही था, अल्लाह ताला आप से मुझसे राजी हो जाए। बहुत सारी चाबियां खुल रही हैं, अल्लाह करे कि आप मालदार हो जाए। 8 चाबियां हो गई, अब नवीन यानी 9th की ऑफ प्रोविजन, कमजोरों के साथ एहसान करना। कमजोरों के साथ एहसान करना हसूल रिज़्क के असबाब में से है। कमजोर कौन होते हैं? नातवा, बेआसरा, बेसहारा, मजलूम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेचारों की कोई दुनिया में से ही नहीं है। अब इसके 2 दलाइल आप ले लीजिए। इमाम बुखारी से रिवायत है, मुस्लिम बिन साद की, साथ ने ख्याल किया कि इन्हें अपने से कमजोर लोगों पर बर्तरी हासिल है, यानी कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ा ही खूबसूरत जुमला है, हल तुन सरूना व तुरज़कूना इल्ला बि दुआफाइकुम, तुम्हारी मदद सिर्फ तुम्हारे कमजोरों की वजह से की जाती है और इन्हीं की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि कोई शख्स हो जो ये पसंद करे कि दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह उसकी मदद करें, उसकी ताईद फरमाएं, रिस्क के दरवाजे उस पर खोलें, तो वो कमजोर, नातवां, ज़ईफ, बेआसरा और बेसहारा मुसलमानों की इज्जत और तकरीम करे, इनके सब भलाई और एहसान का सलूक रवा रखे। चलिए दूसरा रेफरेंस भी ले लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर लिया करे, जहां भी जो शख्स या फलां है ना, तो वो आप ही और मैं भी हो सकते हैं, तो जो शख्स इन्हें राजी और खुश करना चाहे वो उम्मत के कमजोर लोगों के साथ एहसान करे। इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने हब्बान, हाकिम, ये रिवायत वाले हैं और अबू दरदा रावी हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लम को फरमाते सुना, इबगूनी फी दुआफाइकुम फइन नमा तुरज़कून व तुनसरून बि दुआफाइकुम, मेरी रजा यानी पसंदीदगी। आप सोचिए जरा, अल्लाह के नबी किस चीज से खुश होंगे? मेरी रजा अपने कमजोर लोगों के साथ एहसान करके हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें अपने कमजोर और ज़ईफ लोगों की वजह से रिस्क और नुसरत मिलती है। और अल्लाह के नबी की ये बात कितनी खूबसूरत है। कितने लोग हैं आप में, मेरे में, जो चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमसे बड़े ही खुश हों? क्योंकि अब मुलाकात तो वहीं होनी है अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर पता चला कि अल्लाह के नबी नाराज़ हैं तो क्या खुशी होगी? सोचिए तो सही। और मुल्ला अली कारी इबगूनी फी दुआफाइकुम पे कहते हैं कि अपने फकीर लोगों के साथ एहसान करके मेरी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करो, इससे रिस्क, नुसरत और ताईद मिलती है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे कमजोरों के साथ अच्छा मामला करने की तौफीक बना दे। आप देखिए, एक फकीर और एक कमजोर बंदा, उस पे एहसान करके आप अल्लाह के नबी को खुश कर दें, तो क्या फिर उस पे अल्लाह ताला नहीं खुश होंगे? वो रहमान और रहीम नहीं खुश होंगे? और क्या दुश्मनों के खिलाफ उसकी मदद नहीं करेंगे? तो क्या अपनी करम नवाजी से उस पर रिस्क के दरवाजे नहीं खोलेंगे? तो ऐ अल्लाह, हमें इस आदत से महरूम न रहने देना, हमें इसको हासिल करने वाला बना, इन्नका जवादुन करीम। अल्लाह बहुत देने वाला है, हमें लेना ही नहीं आया आज तक। हम डिग्रियों के पीछे भागते रहे, हम अपनी सीवीज ले लेके भागते और रोते रहे और नेगेटिव जुमले बोलते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने तो देखिए उन सारी चीज़ों के साथ साथ, ये नहीं कि वो सब छोड़ दीजिए, तवक्कुल तो आप सीख ही चुके हैं, ये सिखा दिया, इन सब चीज़ों के साथ साथ तुमने अल्लाह की रहमत पर नज़रें भी रखनी है और उसको राज़ी भी करना है। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह और उसके रसूल को बीच में रखेंगे ना, दे कर बोझ नहीं लगेगा, मांगना नहीं चाहेंगे, एहसान नहीं जतलाएंगे। और इसी तरह से अगला सवाल कि कमज़ोर और नादार हैं कौन? तो घरेलू खादिमीन, मजदूर, माजूर, कैदी। अल्लाह ताला सूरत दुहा में क्या फरमाते हैं, अलम यजिद का यतीम मनफा आवा, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना भी फराहम किया, वह वजह का दौलन फहदा, तुम्हें नावाकिफ़े राह पाया और फिर हिदायत भी बख्शी, वजह का आईलन फागना, और तुम्हें नादार पाया और फिर माल भी दे दिया, फाम यतीम फला तखर, बस यतीम पर सख्ती न करो, वाम साइल फला तनहर, और साइल को झिड़को नहीं, साइल के साथ ऐसा मामला ना करो। और याद रखिए कि ये अल्लाह की रजा को पाने वाली बात है। कैसे अल्लाह के नबी को खुश करके आपने अल्लाह की रजा पा ली और अल्लाह ताला ने इसके दरवाजे खोल दिए आप पे? तो इसके बाद हम आखिरी बात करेंगे आज के सेशन की। नेक्स्ट की ऑफ प्रोविजन इज अल्लाह की राह में हिजरत करना, माइग्रेट इन द वे ऑफ, इन द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। अल्लाह ताला ने कलामे मजीद में सूरत यूनुस आयत 41 में फरमाया, अल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादी मा ज़ुलिमू, لنبوينهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے. کسی طرح یہ لوگ جانتے, یعنی امفیسائز ہے کہ کاش تم اس کو جانو. تو اس میں ہجرت کو اللہ نے مشروط کر دیا کس چیز کے ساتھ, آیت میں اگر ہائی لائٹ کر لینا تو لنبوینہم فی الدنیا, دنیا ملتی ہے. اللہ کے راستے میں ہجرت کیجئے, دنیا پہلے مل جائے گی, آخرت تو بعد میں انشاءاللہ ملے گی. اگلی بھی روایت دیکھ لیجئے, سورۃ آل عمران 195. اور یاد رکھیے یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس وقت آپ کو یہ سبق یاد دلا دیا گیا کیا, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے, ذرا سا تصور میں وہ لوگ لائیے جنہوں نے واقعی اللہ کی نبی کی راہ میں ہجرت کی تھی. اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کبھی پیچھے نہیں ہوتے, یعنی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے نکلیں, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, اقامت دین کے لیے. اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے. تو جو اللہ کے رستے میں نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور فائدہ دے گا. بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ان کو ستایا گیا, اللہ اکبر, اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے, تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت سے مراد کیا ہے؟ تو امام راغب الاصفہانی کہتے ہیں, دار الکفر سے دار الایمان کی طرف جانا, جیسا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف یا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی گئی. اسی طرح محمد رشید کہتے ہیں کہ ہجرت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی طور پر یعنی خالص اللہ کی راہ میں ہو. ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ کے حکم مرضی کے مطابق اقامت دین ہو, یعنی دین قائم کرنے کے لیے نکلے. جس جگہ بیٹھا ہے وہاں دین قائم نہیں ہو رہا, نہ اپنی ذات پہ, نہ بچوں پہ, نہ گھر بار پہ, نہ قوانین ایسے ہیں کہ اسلام سے متعلق ہوں, تو پھر چھوڑ دیجئے اس جگہ کو جہاں آپ کا دین کمزور ہو رہا ہے. اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کافروں کے مقابلے میں, یعنی یا تو پھر وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے جیسا کہ مکہ میں ہو رہا تھا, مومنوں کی نصرت اور تائید ہو. چلیے اس کو سوچ لیتے ہیں, ہجرت تو سمجھ آ گئی. اللہ کی راہ میں ہجرت کا سبب رزق کی دلیل ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اللہ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے والا اس شہر میں خیر اور نعمت پائے گا, اور یہ بات پہلے شہر والوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگی, کیونکہ جب وطن چھوڑ کر جانے والے کے دوسری جگہ کے معاملات اور اس کی خبر وطن کے لوگوں کو پہنچے گی تو وہ اس کے ساتھ اپنے برے سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں ذلت اور رسوائی کا احساس ہوگا. بات بہت گہری ہے, مکہ والوں کی ذہن میں لے آئیے. اللہ نے مدینہ میں اللہ کے نبی کو کتنی محبتیں دیں, کتنا پیار دیا, تو ظاہر ہے مکہ والوں کو خبریں تو پہنچ جاتی تھی نا, تو پھر روئیں دھوئیں جو مرضی کہیں, لیکن وہ وقت تو گزر گیا سو گزر گیا. یاد رکھیے اللہ نے آپ کو مجھے سب کو موقع دیے ہوئے ہیں, اگر ہم اپنے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے وہ مواقع چھین لے گا. اور جتنا زیادہ نعمتوں کی قدر کریں گے اتنی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے اور میرے پاس رہیں گی. آیت نوٹ کیجئے گا, وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اور جو کوئی اپنا اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑے گا वो जमीन में रहने की बहुत जगह रोजी पाएगा। दो बातें मुरागमन कसीर वसा, यह आयत हमने भी रिसेंटली सूरत अन्निसा में पढ़ी है, आयत नंबर 100 है, जो हमारे आयत पाए तफसीर के सेट में अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, बल्कि अभी इस्लाम 360 पे भी वो ऐड हो जाएगी और आप लोग इसकी तफसीर सुन लीजिए, नूरुल कुरान पे भी है। यकीन कीजिए कि फेवरेट टॉपिक है ये। हिजरत के फवायद बहुत हैं, क्योंकि ये हिजरत की नेकी हमारे कल्चर में इतनी आम नहीं है। हम नमाज रोज़ा हज ज़कात से ही रुक जाते हैं, बस इससे ज़्यादा क्या। हाँ, हिजरत वो की थी मक्का में से मदीना, और वो हिजरत करके आए थे अफगानीस हमारे मुल्क में। हालांकि आपको नहीं पता कि हिजरत क्या है, कि हर उस चीज़ को छोड़ दीजिए जो अल्लाह को नापसंद हो। ये पहला दर्जा है, अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु, जो अल्लाह ने रोका उससे रुक जाए। नफ्स को गुनाहों से रोकना भी एक हिजरत है। तो इसके स्टेप्स हैं, इस मौजू के डिटेल से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपका सीना खुलेगा, आपका शरह सदर होगा और अल्लाह ताला वादों के खिलाफ नहीं करता। तो क्या पता चला, सातन का लफ्ज जो आयत में गुजरे ना, वो सातन यानी अल्लाह उसको साथ देंगे, वुस्सत का लफ्ज है असल में ये। इससे मुराद रिस्क में वुस्सत और कुशादगी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और चंद और इमाम सातन की तफसीर में क्या कहते हैं, गुमराही की तंगी के बजाय रुश्द व हिदायत की वुस्सत और फकर की जगह तवंगुरी। दो चीजें मिलेंगी इसमें आपके हिसाब से। अगर गुमराह थे तो अल्लाह हिदायत दे देगा, और अगर गुरबत थी तो अल्लाह दौलत दे देगा। और इमाम मालिक कहते हैं सातन से मुराद शहरों की वुस्सत है, यानी जब जमीनें तंग हो जाती हैं ना, वइज़ा दाक़त अलैहिम अल-अर्ध, तो फिर अल्लाह तआला बंदे को वहां से निकाल के वुस्सतें देता है, बीमार रहुबत। इसी तरह इसी आयत पे इमाम कुर्तुबी का भी एक तबसरा सुन लीजिए। इमाम मालिक की तफसीर अरबी जुबान की फसाहत के सबसे ज्यादा करीब है, क्योंकि जमीन और ठिकानों की कुशादगी की वजह से रिस्क की फरावानी, गमों से सीनों की आजादी, ये नोट कीजिएगा, दिल का बोझ उतर जाता हिजरत से, और इसी की तरह की दीगर आसानियों के असबाब मुयसर आते हैं। देखिए मक्का में मुसलमानों की क्या हालत थी, डर डर के रहते थे, और अल्लाह ने मदीना में ले जाकर कैसा सुकून दिया उनको। तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा हक और सच्चा है। बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। तो करना क्या है? एक कोटेशन सुन लीजिए, ए इंसान, अगर तू वतन से हिजरत इस खदशे की वजह से नापसंद करता है, और नोट कीजिएगा यहाँ एक बात, इंसान हिजरत को पसंद नहीं करता। हम जिस जगह बैठे होते हैं, हम बैठे ही रहते हैं, हमारे दिल लग जाते हैं, ये मेरा अपना घर है, जाती घर है, बचपन से इधर हूँ, अब छोड़ना नहीं, ये पोते नवासे भी इधर ही होंगे। फितरी बात है, इंसान अपने घर, अपने वतन, अपने शहर, अपनी गली को पसंद करता है। लेकिन अल्लाह का दीन सामने हो तो ये चीजें पांव की बेड़ियां नहीं बनती। ए इंसान, अगर तू वतन से हिजरत इस खदशे की वजह से नापसंद करता है कि तुझे परदेश की मुशक्कतों और मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, तो तू इस अंदेशे को अपने दिल और दिमाग से निकाल दे। देखिए कैसे माइंड सेटिंग की जा रही है हिजरत के लिए। जहां तू हिजरत करके जाएगा, वहां अल्लाह तुझे इतनी ज्यादा नेमतें और इतना बुलंद बाला मुकाम अता फरमाएंगे कि जिन्होंने तुझे वतन से निकाला, वो तेरी इस हालत और कैफियत को देखकर जिल्लत और रुसवाई महसूस करेंगे। और हिजरत करना तेरे लिए रिस्क की फराखी और वुस्सत का सबब बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें हर उस चीज से दूर कर दे जो हमें मकसद से दूर कर दे। सही बुखारी की रिवायत है 5070। हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नियत करे, इसलिए जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए हो, इसे अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल होगी। लेकिन जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने की नीयत से या किसी औरत से शादी के इरादे से हो, तो इसकी हिजरत इसी के लिए है जिसके लिए इसने हिजरत की। यानी अपनी हर चीज को भी हिजरत ना कह दो, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का पता है। और बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी तारीख की निशानी भी होती है, कि जब कोई बात सच है तो वो हकीकत में सच ही होगी। امام رازی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، سنا دیتی ہوں، کیا کہتے ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہجرت سے فائدے دیتے ہیں؟ تاریخی طور پر اللہ اس وعدے کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، یعنی آج بھی اس وعدے کی سچائی واضح ہے. تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ جب صحابہ کرام اللہ کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے اپنے عزیز و اقارب، گھروں، ساز و سامان اور مال و دولت کو چھوڑ کر گئے، تو پہلے تو اللہ نے مدینہ میں بسایا، شروع میں کچھ سال مشقت کے ہوئے، کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ سرزمین شام، قرآن اور زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور شام کے صرف محلات اور مدائن کے سفید محلات کا ان کو مالک بنا دیا. یعنی اس دور کی سپر پاورز مسلمانوں کے زیر اثر آ گئیں، سنا کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور قیصر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے. اس لیے پھر امام رازی کہتے ہیں کہ انسان، اگر تو اس خدشے کی وجہ سے ہجرت کو ناپسند کرتا ہے، وہی بات جو پیچھے گزری، وہی بات ان کی ہے، تو کیا سیکھا؟ یہ تھا آج کا زاد الخیر Day 3. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رزق کی چابیاں کھولنے والا بنائے. ایک ایک چیز کو اپنے اوپر لیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی کچھ محنت اور غور کرنے کی توفیق دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی. صرف بچوں کے پڑھانے اور ان کے کیریئر کی فکر میں ہم بوڑھے نہ ہو جائیں، اور کمائیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.